एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपका मेजबान। आज हम एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं विवादास्पद दार्शनिक की दुनिया में झांकेंगे, मार्टिन हाइडगर।
और मैं हूं आपकी साथी मेजबान। हाइडगर का नाम सुनते ही कई लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, उनके विचार हैं ही इतने जटिल।
बिल्कुल, लेकिन आज हमारे पास एक गाइड है, माइकल इनवुड की किताब हाइडगर, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो उम्मीद है सफर आसान रहेगा।
हाँ, ये किताब एक तरह से चाबी का काम करती है, पर सवाल ये है कि आज, मतलब इस दौर में, हाइडगर जरूरी क्यों है?
सही सवाल है। क्या उनके वो पुराने विचार आज की टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में भी कोई मायने रखते हैं?
मुझे तो लगता है बहुत रखते हैं, क्योंकि हाइडगर ने जो सवाल उठाए थे कि हमारे होने का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी हमें कैसे बदल रही है, क्या हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं या बस भीड़ का हिस्सा है,
हाँ
वो सवाल तो आज शायद और भी ज्यादा छुपते हैं ना?
बिल्कुल, मतलब ये सिर्फ फलसफा नहीं, हमारी अपनी जिंदगी से जुड़े सवाल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा।
पहले बात करते हैं माइकल इनवुड की, जिन्होंने ये किताब लिखी है। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जाने माने दार्शनिक है,
अच्छा,
और उनकी खासियत है जर्मन फिलोसोफा, खासकर हेगेल और हाइडेगर जैसे
हाँ,
मुश्किल समझे जाने वाले विचारक।
तो मतलब वो सही व्यक्ति हैं हाइडेगर जैसे जटिल विचारक को समझाने के लिए।
बिल्कुल, उनकी अच्छी बात यह है कि वो हाइडेगर के विचारों की गहराई समझते हैं, लेकिन उन्हें बहुत साफ तरीके से पेश कर सकते हैं। उन्हें पता है कि पाठक कहाँ उलझ सकता है।
और उनका अप्रोच कैसा है, मतलब क्या वो हाइडेगर के फैन हैं या आलोचक?
यही उनकी खासियत है, वो बहुत संतुलित हैं। न तो आंख बंद करके तारीफ करते हैं, न ही सिर्फ आलोचना। वो हाइडेगर के विचारों की मौलिकता तो दिखाते हैं, पर साथ ही
हाँ, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, इसका क्या सार है, ये क्या करने की कोशिश करती है?
देखिए, ये किताब असल में हाइडेगर की सोच की दुनिया का एक नक्शा है, उन लोगों के लिए जो हाइडेगर का नाम सुनते हैं, उनका असर देखते हैं अस्तित्ववाद पर, लिटरेचर पर।
हाँ, सुनते तो हैं,
पर उनकी अपनी किताबें इतनी भारी भरकम है कि हिम्मत नहीं होती पढ़ने की। ये किताब एक एंट्री पॉइंट है।
तो ये किताब क्या कहती है, हाइडेगर का सेंट्रल आइडिया क्या है?
इनवुड बताते हैं कि हाइडेगर के पूरे काम के केंद्र में एक ही बड़ा सवाल है, सेंस फ्रागे।
सेंस फ्रागे,
जी,
ये क्या है?
मतलब होने के अर्थ का सवाल।
बीइंग का सवाल।
जी,
हाइडेगर को हैरानी थी कि सदियों से पश्चिमी दर्शन ये पूछना ही भूल गया कि किसी चीज के होने का मतलब क्या है। अच्छा, जैसे हम कहते हैं ये मेज है, मैं हूं, तो ये जो होना है इसका मतलब क्या है, ये सवाल।
बिल्कुल, हम चीजों पे तो बहुत ध्यान देते हैं, मेज, कुर्सी, इंसान, लेकिन उनके होने पर नहीं। हाइडेगर इसी भूले हुए सवाल को जगाना चाहते थे।
और इसके लिए उन्होंने शुरुआत कहां से की?
उन्होंने शुरुआत की डाजाइन से। डाजाइन यानी हम, इंसान, वो सत्ता जिसके लिए उसका अपना होना एक मुद्दा है, एक सवाल है।
डाजाइन मतलब यहां होना या वहां होना?
हाँ, कुछ ऐसा ही। हम वो जगह हैं जहां होने का सवाल उठता है। इनवुड की किताब हमें यही समझने में मदद करती है, हाइडेगर के तर्क, उनके खास शब्द और उनकी सोच का ढांचा।
चलिए अब कुछ मुख्य विचारों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, क्रम से ना सही पर जो खास बातें हैं, जैसे ये दुनिया में होना, बीइंग इन द वर्ल्ड, इसका क्या मतलब है?
ये हाइडेगर का एक बहुत क्रांतिकारी विचार था। वो कहते हैं कि हम कोई अलग थलग दिमाग नहीं है जो बाहर की दुनिया को ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा हो।
अच्छा, तो फिर क्या है?
हमारा तो बुनियादी होना ही दुनिया में होना है। हम दुनिया में रचे बसे हैं, जैसे पानी में मछली। दुनिया कोई बाहर की चीज नहीं, हम उसी का हिस्सा है।
और दुनिया मतलब सिर्फ चीजों का ढेर नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया हमारे लिए मतलबों का, रिश्तों का, हमारे कामों का एक जाल है। यहीं पर वो दो तरह से चीजों से हमारे रिश्ते की बात करते हैं।
हाँ, वो हथौड़े वाला उदाहरण।
बिल्कुल, जब हम हथौड़े से कील ठोक रहे हैं तो हम हथौड़े के बारे में सोचते नहीं, वो हमारे हाथ का हिस्सा बन जाता है। ये है रेडी टू हैंड, ज़ू हैंडनाइट, चीजें जब इस्तेमाल में आती हैं।
और दूसरा?
दूसरा है प्रेजेंट एट हैंड, फोर हैंडनाइट, जब हथौड़ा टूट जाए या हम उसे बस एक वस्तु की तरह देखें, उसके गुणों का विश्लेषण करें। हाइडेगर कहते हैं कि दर्शन ने हमेशा इसी दूसरे वाले नजरिए पर ज्यादा जोर दिया, जबकि हमारा असली वास्ता तो पहले वाले से है।
दिलचस्प है, तो हम दुनिया में हैं, चीजों का इस्तेमाल करते हैं
और हम इस दुनिया में फेंके हुए हैं, गिव ओर फिनाइट।
फेंके हुए मतलब
हम चुनते नहीं कि हमें कब, कहाँ, किस परिवार, किस समाज में पैदा होना है। ये बस हो जाता है, ये हमारी तथ्यात्मकता है, हमारी हकीकत।
लेकिन हम सिर्फ फेंके हुए मोहरे तो नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर आता है प्रक्षेपण, एंटवर्फ। हम हमेशा भविष्य की संभावनाओं की ओर खुद को प्रोजेक्ट करते हैं। हम सिर्फ वो नहीं जो हम हैं, बल्कि वो भी हैं जो हम बन सकते हैं। हमारा होना एक तरह का प्रोजेक्ट है, एक खुली संभावना।
अच्छा, तो अगर हम संभावनाओं से भरे हैं तो फिर हम अक्सर एक ढर्रे पर क्यों चलते दिखते हैं, सब एक जैसा है?
हाँ, यहीं पर हाइडेगर का एक और बड़ा थीम आता है, प्रामाणिकता बनाम अप्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी और इनऑथेंटिसिटी।
ये क्या है?
हाइडेगर मानते थे कि ज्यादातर समय हम अप्रामाणिक मोड में जीते हैं। इसे वो कहते हैं वे की दुनिया में जीना, दासमान।
वे मतलब लोग।
हाँ, लोग। हम वो करते हैं जो लोग करते हैं, वो सोचते हैं जो लोग सोचते हैं, वैसी बातें करते हैं जैसी लोग करते हैं। ये भीड़ की दुनिया है जहां अपनी जिम्मेदारी से बचा जाता है।
सोशल मीडिया इसका अच्छा उदाहरण हो सकता है शायद, जहां सब एक ही ट्रेंड फॉलो कर रहे होते हैं।
बिल्कुल। उस वे की दुनिया में होती है व्यर्थ बात, गेरेडे, बिना समझे बस बातें दोहराना। होती है जिज्ञासा, नॉइगियर, हर नई चीज पर कूदना बिना गहराई में जाए। और होती है अस्पष्टता, स्वाईदैतिशकाइट, जहां कुछ भी साफ नहीं होता, सब धुंधला होता है।
तो फिर प्रामाणिक होना क्या है? इस भीड़ से निकलना।
हाँ, प्रामाणिक होना है अपने होने की जिम्मेदारी लेना, अपनी संभावनाओं को पहचानना और उन्हें जीना। और इसके लिए एक खास एहसास या मूड जरूरी है, एंग्स्ट, चिंता।
चिंता, डर नहीं?
नहीं, ये डर से अलग है। डर किसी खास चीज का होता है, चिंता का कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये एक बेचैनी है, जैसे दुनिया के सारे मायने अचानक खोखले लगने लगे।
ये तो काफी डरावना लगता है।
लेकिन हाइडेगर के लिए ये बहुत जरूरी है। यही चिंता हमें वे की दुनिया की नींद से जगाती है। ये हमें हमारी आजादी का एहसास कराती है कि हम चुन सकते हैं, और ये हमें हमारी सबसे पक्की, सबसे निजी संभावना की याद दिलाती है।
कौन सी संभावना?
हमारी अपनी मौत, बीइंग टुवर्ड्स डेथ,
मौत की ओर होना।
हाँ, मौत सिर्फ अंत नहीं है, ये वो संभावना है जो हर पल हमारे साथ है, और ये हमारी अपनी है, कोई और हमारे लिए नहीं मर सकता। जब हम इस सच्चाई का सामना करते हैं हिम्मत से, तो रोजमर्रा की छोटी मोटी बातें, वे क्या कहेंगे, ये सब पीछे छूट जाता है।
और तब?
तब हम अपनी असली संभावनाओं को, अपनी जिंदगी को पूरी शिद्दत से जीने के लिए आजाद होते हैं। यही है प्रामाणिक जीवन हाइडेगर के अनुसार।
ये तो उनके शुरुआती काम बीइंग इन टाइम की बातें हुई, लेकिन बाद में उनके विचारों में कुछ बदलाव भी आया, वो खेरे यानी मोड़ की बात।
हाँ, बिल्कुल। बाद के हाइडेगर का फोकस थोड़ा बदला, अब वो डासाइन से ज्यादा खुद होने यानी बीइंग पर ध्यान देने लगे, कि बीइंग खुद को इतिहास में कैसे प्रकट करता है या कैसे छिप जाता है।
और इसी दौर में उन्होंने टेक्नोलॉजी पर लिखा है ना?
जी, और ये आज शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। उन्होंने आधुनिक टेक्नोलॉजी, टेक्निक की गहरी आलोचना की। उनका कहना था कि असली खतरा मशीनों में नहीं है।
तो फिर किस में है
खतरा? है उस नजरिए में जो टेक्नोलॉजी के पीछे है, जिसे वो गेस्टेल कहते हैं, एनफ्रेमिंग।
गेस्टेल एनफ्रेमिंग, ये क्या मतलब हुआ?
ये एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा नजरिया जो पूरी दुनिया को, नदियों, पहाड़ों, जंगलों, यहाँ तक कि इंसानों को भी सिर्फ एक रिसोर्स की तरह देखता है, एक स्टैंडिंग रिजर्व, बिष्टांड की तरह।
स्टैंडिंग रिजर्व मतलब बस इस्तेमाल के लिए रखी चीज।
बिल्कुल, जैसे नदी बस बिजली बनाने के लिए है, जंगल बस लकड़ी देने के लिए, इंसान बस ह्यूमन रिसोर्स। हर चीज को कंट्रोल करना है, नापना है, इस्तेमाल करना है, ऑप्टिमाइज करना है।
अरे हाँ, ये तो आज हर जगह दिखता है, हर चीज का डेटा, हर चीज की एफिशिएंसी।
सही कहा।
और हाइडेगर की चिंता ये थी कि ये नजरिया दुनिया के दूसरे तरीकों से खुलने का रास्ता बंद कर देता है। हम प्रकृति की सुंदरता, कला की गहराई या रिश्तों के असल मायने भूल जाते हैं, सब कुछ बस उपयोगिता बन जाता है।
ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब टेक्नोलॉजी सिर्फ टूल नहीं, वो दुनिया देखने का एक तरीका है जो हमें बदल रहा है।
हाँ, और ये हमें बीइंग के असल रहस्य से दूर ले जा रहा है।
एक और पहलू है जिस पर बात करनी जरूरी है, हाइडेगर और नाजीवाद। इनवुड इस पर क्या कहते हैं?
हाँ, ये एक बहुत मुश्किल और दुखद अध्याय है, 1933 में वो फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी के रेक्टर बने और उन्होंने खुले तौर पर नाजी शासन का समर्थन किया।
ये उनके काम पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है।
बिल्कुल, सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक चूक थी या उनके दर्शन में ही कुछ ऐसा था, जैसे वो संकल्प, रिजॉल्व या नियति, डेस्टिनी की बातें करते थे, जिसने उन्हें उस तरफ जाने दिया। इनवुड क्या निष्कर्ष निकालते हैं?
वो कोई आसान जवाब नहीं देते। वो दिखाते हैं कि ये कितना जटिल मुद्दा है। वो आलोचनात्मक नजर बनाए रखते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमें महान विचारकों को भी पूजना नहीं चाहिए, बल्कि उनके विचारों को सावधानी से परखना चाहिए।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या होंगी? मेरे लिए एक बड़ी बात यह है कि हम दुनिया में चीजों से कैसे जुड़ते हैं, वो रेडी टू हैंड और प्रेजेंट एट हैंड का फर्क। हम कर्ता पहले हैं, ज्ञाता बाद में।
और मेरे लिए ये प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का सवाल, दसमान यानी वे की दुनिया से निकलकर अपनी जिम्मेदारी लेना, और इसमें चिंता अंक्स की भूमिका। भारत जैसे समाज में जहां लोग क्या कहेंगे का दबाव बहुत होता है, ये बहुत अहम है।
हाँ बिल्कुल। और तीसरा टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट, ये गेस्टेल या एनफ्रेमिंग का आइडिया। क्या हम हर चीज को बस एक रिसोर्स या बिस्टैंड की तरह देख रहे हैं? ये चेतावनी आज बहुत जरूरी लगती है।
चौथा, ये के अस्तित्व सार से पहले आता है, मतलब हम पहले हैं फिर हम बनते हैं, कोई तयशुदा खांचा नहीं है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है।
इन बातों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देख सकते हैं? कुछ उदाहरण,
जैसे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वक्त सोचें, क्या मैं सच में कुछ कनेक्ट कर रहा हूँ या बस डासमान का हिस्सा बन रहा हूँ? क्या ये प्रामाणिक है?
या मान लीजिए आप कहीं घूमने गए किसी नदी किनारे, क्या आप बस उसकी फोटो खींचकर कंटेंट बना रहे हैं या आप उस नदी के अपने होने को, उसकी शांति को महसूस कर पा रहे हैं बिना उसे बिस्टांड बनाए?
बिल्कुल। या अपने काम के बारे में सोचें, क्या उसमें सिर्फ दिमाग लगता है या हाथों का हुनर भी? हाइडेगर के लिए शारीरिक काम, क्राफ्ट बहुत मौलिक था दुनिया से जुड़ने के लिए। वो हमें याद दिलाता है कि सब कुछ सिर्फ थियरी नहीं है।
और वो चिंता वाली बात, एंग्स्ट, जब वो बेचैनी महसूस हो तो शायद उसे दबाने के बजाय सुने, हो सकता है वो हमें कुछ बता रही हो।
हाँ, शायद वो एक मौका हो रुक कर ये सोचने का कि मेरे लिए वाकई क्या जरूरी है, प्रामाणिक रास्ता क्या है।
तो अंत में इस किताब और हाइडेगर से आपने क्या सीखा? मेरे लिए तो ये कि हाइडेगर जवाब कम, सवाल ज्यादा देते हैं। वो हमें दुनिया को, अपने होने को बिल्कुल नए ढंग से देखने पर मजबूर करते हैं।
और मेरे लिए सबसे यादगार शायद टेक्नोलॉजी पर उनकी नजर है। ये सोचना कि तकनीक तटस्थ नहीं है, वो दुनिया को देखने का एक तरीका है जो सब कुछ बदल रहा है, ये काफी पावरफुल आइडिया है। ये हमें ज्यादा सचेत रहने को कहता है।
हाँ, हाइडेगर को पढ़ना एक चुनौती है। उनके जीवन के पहलू मुश्किल हैं, लेकिन उनके विचार हमें जगाते हैं। वो हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को, हमारे होने को हल्के में लेने से रोकते हैं, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी प्रासंगिकता है आज भी। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।